नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान का औचक निरीक्षण किया। पशु कल्याण बोर्ड की बैठक में दिल्ली के करीब 10 लाख आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने की मंजूरी दी गई। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ वायु गुणवत्ता सुधार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर एम्स ने विद्यार्थियों के लिए नेवर एलोन नामक स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम शुरू किया। और दिल्ली पुलिस ने 21 किलो मादक पदार्थ के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के हालात पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अस्पताल को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और पर्याप्त बुनियादी ढांचे से सुसज्जित करना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
यहाँ पर जितने डॉक्टर्स हैं, जितना सिस्टम है, उसमें केवल मात्र 10 वेंटिलेटर के बेड हैं। अभी हमने ये तय किया है कि ना केवल हम इभास को नया बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना करके देंगे, परंतु सबसे पहले विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर यहाँ की मशीनरी की जितनी रिक्वायरमेंट है, MRI, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी की सारी फैसिलिटीज इभास को हम इसी फाइनेंशियल ईयर में देंगे।
नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने आज विद्यार्थियों की आत्महत्याओं से निपटने और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए नेवर अलोन नामक स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम शुरू किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर एम्स ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए AI आधारित नेवर अलोन ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में डिप्रेशन के मामलों को कम कर आत्महत्या को रोकना है। ये 24 घंटे काम करने वाला ऐप है, जिसे व्हाट्सएप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थी किसी भी समय मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से वर्चुअल या ऑफलाइन परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। एम्स दिल्ली में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में 1,70,000 से अधिक लोगों ने आत्महत्या की। इनमें 18 से 30 वर्ष की आयु के 35% युवा शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस ऐप का उद्देश्य आत्महत्या से जुड़े मामलों को कम करना और विद्यार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में संबंधित अधिकारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना सहित सभी कार्यों को और तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में 10 नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। बैठक में विधायकों, पार्षदों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेपाल में उत्पन्न असामान्य परिस्थितियों को लेकर भारत के नेपाल स्थित राजदूत तथा भारत में नेपाल के राजदूत से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने राजदूतों से नेपाल में मौजूद दिल्लीवासियों की सुरक्षा, सहयोग और शीघ्र वापसी की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में दिल्ली का कोई भी नागरिक अकेला नहीं है। श्रीमती गुप्ता ने नेपाल में मौजूद दिल्ली वासियों के परिजनों से धैर्य बनाए रखने और केवल सरकार द्वारा जारी सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर आज उनसे शिष्टाचार भेंट कर बधाई दी। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि श्री राधाकृष्णन के सार्वजनिक जीवन का व्यापक अनुभव और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनका दृढ़ समर्पण राष्ट्र के लिए एक अमूल्य धरोहर सिद्ध होगा। भेंट के दौरान श्री गुप्ता ने श्री राधाकृष्णन को दिल्ली विधानसभा के नवीन कार्यों से अवगत कराया। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने दिल्ली विधानसभा को एक विरासत परिसर के रूप में विकसित करने की दूरदर्शी पहल भी उनसे साझा की। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा और समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज दिल्ली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने किसानों से संवाद किया। श्री मिश्रा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि बाढ़ के कारण फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने स्थानीय जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को शीघ्र मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। विकास मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में पशु कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिल्ली के करीब 10 लाख आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने की स्वीकृति दी गई। श्री कपिल मिश्रा ने बताया कि बैठक में कुत्तों के काटने के मामलों की रोकथाम, टीकाकरण की डिजिटल मॉनिटरिंग और हर जिले में पशु कल्याण समिति के गठन का निर्णय भी लिया गया।
तो जो फंड रुका हुआ था एनिमल वेलफेयर बोर्ड में ट्रांसफर होना था, वो फंड ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है। रेबीज के खिलाफ बड़ा अवेयरनेस कैंपेन दिल्ली में चलाया जाएगा। रेबीज एक्शन प्लान भी तैयार है, उसको भी हम लोग लागू करने जा रहे हैं, उसका भी निर्णय आज लिया गया है। जितने भी हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनको माइक्रोचिपिंग करना UNDP के साथ मिलकर, इसका भी निर्णय लिया गया है। और अगले 2 साल में 10 लाख दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स को माइक्रोचिप किया जाएगा और हर डिस्ट्रिक्ट में एनिमल वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी जो कि पशु क्रूरता के लिए काम कर सकती है और डॉग फीडिंग को लेकर हम लोग गाइडलाइन जारी करने जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधार के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की उपस्थिति में संपन्न हुए समझौते के अंतर्गत DPCC के 6 मौजूदा पोर्टल का NGD द्वारा विश्लेषण और एकीकरण किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
इस समझौते के माध्यम से रियल टाइम प्रदूषण, हॉटस्पॉट मैपिंग, स्मॉग पूर्वानुमान और एकीकृत डैशबोर्ड जैसे AI आधारित उपकरणों का विकास किया जाएगा। इस साझेदारी के तहत डेटा, ट्रैफिक कैमरा और पर्यावरणीय सेंसर से मिली जानकारी का उपयोग कर हाइपर लोकल स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण संभव होगा। रियल टाइम अलर्ट, पूर्वानुमानित विश्लेषण और उन्नत डेटा प्लेटफॉर्म को अधिक प्रभावी और स्मार्ट बनाया जाएगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि तकनीक और डेटा के समावेश से दिल्ली की हवा सुरक्षित बनेगी और यह कदम बच्चों के भविष्य की रक्षा करेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रौद्योगिकी और नवाचार भारत को उत्पादकता के नए आयाम प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के 58वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि तकनीकी प्रगति विदेशी प्रौद्योगिकी पर देश की निर्भरता को कम कर सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार कृषि उपकरणों में फ्लेक्स इंजन मशीनों का उपयोग करेगी। उन्होंने आज नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन FADA के 7वें ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मंत्रालय कृषि उपकरण कंपनियों के साथ बैठक करेगा और इस बारे में चर्चा करेगा कि वे कृषि उपकरणों में वैकल्पिक ईंधन और जैव ईंधन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। श्री गडकरी ने बताया कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI एथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर रहा है जिसे ईंधन डीजल में मिलाया जा सकता है।
नाउ वी आर प्लानिंग टू यूज मेथेनॉल In agriculture equipment, we are trying to use flex engine machines and the process is there that from ethanol we are getting isobutanol and ARAI is doing the experiments. Some of the experiments they are telling me, we can add 10% of isobutanol in diesel also. And now, tomorrow, in my office, we have a big meeting with agriculture equipment companies that how we can use alternative fuel and biofuel in agriculture equipment.
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज पेंशन संबंधी शिकायतों के निपटान में नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में 14वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों की समस्याओं के समाधान का दायित्व संबंधित विभागों का होना चाहिए। श्री सिंह ने तथ्यों और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए AI संचालित उपकरणों के उपयोग का भी सुझाव दिया। इससे शीघ्र समस्याओं का निवारण और समय की बचत सुनिश्चित हो सकेगी। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने 2 मादक पदार्थ तस्करों और एक खरीदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 21 किलो मादक पदार्थ और एक स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी पहले भी NDPS एक्ट के मामलों में लिप्त पाए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज नई दिल्ली में दुनिया के पहले डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
श्री उइके ने कहा कि आदि संस्कृति एक डिजिटल अकादमी और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो राष्ट्रीय और वैश्विक दर्शकों के लिए आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और जानकारी का एक ऑनलाइन बाजार है। उन्होंने कहा कि यह सांस्कृतिक संरक्षण और आजीविका के नए अवसर सृजित करेगा। एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी के परियोजना अधिकारियों के साथ आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनजातीय विरासत का संरक्षण केवल संस्कृति की रक्षा के बारे में नहीं है बल्कि जमीनी स्तर सम्मान, सशक्तिकरण और अवसर सुनिश्चित करने के बारे में भी है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग और रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ जया भारती।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश की विशाल जनसंख्या, मजबूत औद्योगिक आधार और नवाचार की क्षमता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री बिरला ने ये बात कही। देश की विकास गाथा में एल्यूमिनियम के महत्व पर श्री बिरला ने कहा कि इस उद्योग में विकास को गति देने की अपार क्षमता है। श्री बिरला ने कहा, स्टार्टअप, अत्याधुनिक अनुसंधान और डिजिटल समाधान एल्यूमिनियम सहित उद्योगों को नया रूप तथा दूरगामी सामाजिक और आर्थिक परिणाम दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में हालिया बदलाव के बाद पूर्व पैक वस्तुओं के निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को 31 दिसंबर तक बिना बिके स्टॉक पर संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी घोषित करने की अनुमति दे दी है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कंपनियां पुराने स्टॉक पर एमआरपी संशोधित कर सकती हैं, हालांकि मूल एमआरपी दिखाई देनी चाहिए और किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग की अनुमति नहीं होगी। निर्माताओं और पैकर्स को समाचार पत्रों में कम से कम 2 विज्ञापन जारी कर मूल्य संशोधन के बारे में सूचित करने की भी आवश्यकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि फोन पे जैसी निजी वित्तीय सेवा कंपनी छोटे दुकानदारों और ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने का अवसर दे रही है। नई दिल्ली में डिजिटल फर्स्ट उद्यम सहायता पंजीकरण की शुरुआत करते हुए उन्होंने ये बात कही। फोन पे ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के सहयोग से ये सेवा शुरू की है। श्री मांझी ने कहा कि ऐसी पहल का लाभ उठाकर दूरदराज के नागरिक भी स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज दिन भर मौसम साफ रहा। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 0.4% यानी 324 अंक बढ़कर 81,425 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 104 अंक बढ़कर 24,973 दर्ज हुआ। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की तीर्थयात्राएं सुचारू रूप से जारी हैं। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री मार्गों पर सड़क संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि 15 सितंबर तक सभी मार्ग पूरी तरह से बहाल हो जाएंगे और उसी दिन हेलीकॉप्टर सेवाएं भी फिर से शुरू होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान का औचक निरीक्षण किया। पशु कल्याण बोर्ड की बैठक में दिल्ली के करीब 10 लाख आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाने की स्वीकृति दी गई। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ वायु गुणवत्ता सुधार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर एम्स ने विद्यार्थियों के लिए नेवर अलोन नामक स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम शुरू किया। और दिल्ली पुलिस ने 21 किलो मादक पदार्थ के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।